नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमें जानकर बहुत खुशी होती है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपके आत्मिक जीवन में उन्नति हो रही है। हम यही चाहते हैं कि इसी लगन और रुचि के साथ हमारा ये कार्यक्रम सुनते रहें और पत्र लिखते रहें। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पौलुस द्वारा लिखी गई गलातियों के नाम पत्री का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पत्री का मुख्य विषय है विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, नया हौसला मैंने जीने का पाया, जीवन सजाया सजाया। जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, नया हौसला मेरी जिंदगी में थे नफरतों के साए, मेरी जिंदगी में थे नफरतों के साए, अपने हुए थे पराए, प्यार किसी
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और विशेष करके अपने सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मैं आप सबका भी स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से गलातियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि व्यवस्था मृत्युदायक थी, परंतु उसमें दया का प्रावधान था और हमने यह भी देखा कि व्यवस्था मसीह के आने तक एक अस्थाई व्यवस्था थी। अतः जिनके पास मसीह है उनके लिए अब व्यवस्था किसी काम की नहीं। पौलुस कहता है कि व्यवस्था स्कूल के शिक्षक की नाई मसीह तक आने में मार्गदर्शक मात्र थी। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर पिता से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। हम आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा करते हैं। आज इस समय जब हम आपके वचन में से फिर से एक बार अध्ययन करना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप हमें से प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि आज हम जो कुछ भी सीखते हैं निश्चित रूप से हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए आशीष का कारण ठहर सके। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, किसी प्रकार के तनाव में हैं, पारिवारिक और व्यक्तिगत, जो नौकरी की तलाश में हैं, जो अपने जीवन में संतान की इच्छा रखते हैं। प्रत्येक के जीवन को आप स्पर्श करें, आज के वचन के द्वारा उनसे बातचीत करें, ताकि आपकी शांति उनके जीवन में आने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, इस वक्त हम सब अपने आप को आपके हाथ में सौंप देते हैं, आप हमारी सहायता करें। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम इन दिनों गलातियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं, आज आप मेरे साथ निकाल लीजिए गलातियों की पत्री 3:24। 3:24 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें। यह एक असाधारण अंश है। पौलुस स्पष्ट कहता है कि मूसा की व्यवस्था से उद्धार नहीं है। रोमियो की पत्री 4:5 में वह लिखता है कि काम करने वाले को मजदूरी देना दान नहीं है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। परमेश्वर ने उद्धार के निमित्त मनुष्य के कर्मों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वह कहता है कि हमारी धार्मिकता मैले चित्रों की नाई है। यशाया की पुस्तक 64:6 में हम इसे पाते हैं। परमेश्वर व्यवस्था पालन को स्वीकार करने के विरोध में है। व्यवस्था से उद्धार नहीं है, वह तो केवल दोष दिखा सकती है। वह पापियों के उद्धार के लिए नहीं वरन उन्हें पापी दिखाने के लिए दी गई थी। व्यवस्था पाप का निवारण करने की अपेक्षा पापों को उजागर करती है। वह आपको पाप से बचा भी नहीं सकती, क्योंकि पाप तो मानव जीवन में प्रवेश कर चुका है। व्यवस्था दिखाती है कि मनुष्य वास्तव में कुरूप एवं अपरिष्कृत पापी है। मैं आपको एक व्यवहारिक उदाहरण देता हूं जो शायद समझने में सहायक हो। आप दर्पण देखते हैं तो आपको अपने चेहरे पर गंदगी दिखाई देती है। अब वह दर्पण जो आपके चेहरे की गंदगी दिखाता है, क्या उसे दूर कर सकता है? क्या दर्पण आपकी उस गंदगी को साफ कर सकता है? आप अपना चेहरा उस पर रगड़ कर देखें, यदि कोई देख ले तो आपको मानसिक चिकित्सक के पास ले जाने का परामर्श देगा। परंतु मेरे मित्रों, हम ऐसा नहीं करते हैं। हम चेहरे को दर्पण से साफ नहीं करते, हम पानी से अपने चेहरे को धोते हैं, साबुन लगाते हैं ताकि हम साफ हो जाएं। आज कलीसिया में अनेक विश्वासी व्यवस्था के दर्पण में अपना चेहरा रगड़ रहे हैं। वे सोचते हैं कि इस प्रकार उनके पाप धुल जाएंगे। परमेश्वर का वचन एक दर्पण है जो हमारी वास्तविकता को दिखाता है कि हम पापी हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यही व्यवस्था का उद्देश्य है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस दर्पण के नीचे एक झरना है, जैसा कि एक अंग्रेजी गीत है, लहू का एक सोता है, वह इमानुएल की देह से बहता है, पापी उसमें नहाता है कि धोए सब दागों को। यह विलियम काउपर के द्वारा लिखी गई है। यह दाग मिटाने का स्थान है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह का लहू शुद्ध करता है। व्यवस्था मनुष्य को पापी ठहराती है, उसे पवित्र नहीं बनाती। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 19 पद में पौलुस कहता है कि व्यवस्था इसलिए दी गई थी कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। इसलिए व्यवस्था हमारी शिक्षक हुई है। अब पौलुस बताएगा कि उसके कहने का अर्थ क्या है। तो आइए हम पढ़ें गलातियों के पत्री 3 अध्याय उसका 25 पद। लिखा हुआ है, परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे। ध्यान दीजिए, यहाँ शिक्षक का अर्थ अध्यापक नहीं है। रोम में आधे से अधिक जनसंख्या अर्थात 12 करोड़ की जनसंख्या में वहाँ 6 करोड़ दास थे। वहाँ अधिकारी वर्ग और धनवान मनुष्यों के घरों में बच्चों की देखभाल करने के लिए दास रखे जाते थे। बच्चा जन्म लेते ही सेवकों या दासों को दे दिया जाता था जो उसका पालन पोषण करते थे। वे ही उन्हें नहलाते, उनके कपड़े बदलते और आवश्यकता पड़ने पर उनकी ताड़ना भी करते थे। जब बच्चा स्कूल जाना आरंभ करता तो दास ही उसे तैयार करके स्कूल छोड़कर आता था। यूनानी भाषा में इस शिक्षक शब्द का अर्थ है चलना सिखाना। जैसे छोटा बच्चा होता है, हम उसे चलना सिखाते हैं, यही इसका अर्थ है। दास उन्हें शैक्षणिक प्रशिक्षण देने योग्य नहीं थे, अतः वे बच्चों को स्कूल ले जाते थे। इसी प्रकार व्यवस्था भी अयोग्य थी। वह कहती थी कि मैं तुझे मसीह के क्रूस तक हाथ पकड़कर ले चलती हूँ, क्योंकि तू भटका हुआ है और तुझे एक मुक्तिदाता की आवश्यकता है। व्यवस्था का उद्देश्य है कि मनुष्य उसके द्वारा प्रभु यीशु के पास आए, न कि व्यवस्था पालन पर छाती फुलाकर गर्व करे। आप जानते हैं कि आप व्यवस्था पालन में असमर्थ हैं। आपको अपने मन को खोजकर इस सत्य को देखना है। गलातियों के पत्र 3 अध्याय उसके 26 पद में हम आगे पढ़ते हैं, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। ध्यान दीजिएगा, इस अध्याय के शेष भाग में और अध्याय 4 के अग्र भाग में पौलुस मसीह में विश्वास के द्वारा प्राप्त कुछ लाभ का उल्लेख करता है जो व्यवस्था से प्राप्त नहीं है। व्यवस्था एक विश्वासी को परमेश्वर के पुत्र का स्वभाव नहीं दे सकती है, केवल मसीह यीशु ही ऐसा कर सकता है। प्रभु यीशु में विश्वास करने पर ही हम परमेश्वर के पुत्र हो सकते हैं। आप मसीह में विश्वास करके परमेश्वर के वैध पुत्र हो सकते हैं। परमेश्वर के सब पुत्र वैध हैं। विश्वास और कर्म उद्धार के योग्य नहीं, केवल विश्वास और कुछ नहीं आपको परमेश्वर का पुत्र बनाता है। तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह पर है परमेश्वर की संतान हो। आप संतान कैसे बने? मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा। यहाँ संतान का मूल शब्द है पुत्र। एक इसराइली जो व्यवस्था के अधीन था वह पुत्र नहीं दास था, जबकि निर्गमन की पुस्तक 9 अध्याय उसके 22 पद में परमेश्वर ने इसराइल को अपना पुत्र कहा है। परंतु उस जाति का सदस्य व्यक्तिगत रूप से या व्यक्तिगत रूप में पुत्र नहीं कहलाया था, वह यहोवा का दास कहलाता था। देखिए, मूसा परमेश्वर की अत्यधिक घनिष्ठता में था, परंतु यहोशू 1 अध्याय उसके 2 पद में परमेश्वर ने कहा, मेरा दास मूसा अब मर चुका है। यह उसका उपनाम था। जी हाँ, इसी प्रकार पहला राजा की पुस्तक 11 अध्याय उसके 38 पद में परमेश्वर अपने मन के मनुष्य दाऊद को अपना दास कहता है। अतः मेरे मित्रों, आप व्यवस्था का पालन करें भी जो असंभव है, तो आपकी धार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता के समक्ष तुच्छ है। पुत्र होने के लिए परमेश्वर की धार्मिकता की आवश्यकता है। नया नियम हमें स्पष्ट कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 12 पद में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अधिकार अर्थात वैधानिक अधिकार, न अधिक न कम, बस विश्वास के द्वारा। निकोदेमुस एक फरीसी था जो व्यवस्था पालन में अचूक था, वह भी परमेश्वर का पुत्र नहीं था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 7 पद में यीशु ने उससे कहा कि उसे नया जन्म लेना आवश्यक है। मैं आपको अति स्पष्ट बताना चाहता हूं कि आपकी प्रार्थनाएं, आपका पृथकीकरण, आपके वरदान आदि कुछ भी आपको परमेश्वर का पुत्र नहीं बनाएंगे। केवल मसीह यीशु में विश्वास आपको पुत्र बना सकता है और कुछ भी नहीं। आज की सबसे अधिक संभ्रांत शिक्षा है, परमेश्वर सबका पिता है और सब आपस में भाई भाई हैं। मुक्त विचारकों का कहना है कि संपूर्ण मानव जाति परमेश्वर की संतान है। हम सत्य निष्ठा एवं मान सम्मान की चर्चा करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। हमें परमेश्वर के पुत्र का सा व्यवहार करना है। परंतु प्रभु यीशु ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 44 पद में तो वह धर्म गुरुओं को शैतान की संतान कहा और उसकी लालसाओं के उपभोगी कहा। यह मैं नहीं कहता हूं, यह यीशु ने कहा था। स्पष्ट है कि उसके युग में कुछ लोग परमेश्वर के पुत्र नहीं थे। मेरे मित्रों, आज इस संसार में शैतान के असंख्य पुत्र भाग दौड़ में लगे हैं। वे परमेश्वर के पुत्र नहीं हैं। परमेश्वर के पुत्र होने का एकमात्र उपाय है प्रभु यीशु में विश्वास। यदि आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप कौन हैं। गलातियों के पत्री 3 अध्याय उसके 27 पद में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। ध्यान दीजिए, मसीह में बपतिस्मा का अर्थ पानी का बपतिस्मा नहीं है जो प्रत्येक विश्वासी के लिए आवश्यक है, क्योंकि पानी में डुबकी का बपतिस्मा लेने के द्वारा आप कलीसिया की सदस्यता पाते हैं और यह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। वही आपको कलीसिया विश्वासियों की देह का अंग बनाता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय उसके 13 पद में पौलुस कहता है कि हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। इसका अर्थ है कि हम सब की एक ही पहचान है। हम सब वास्तव में विश्वासियों की देह कलीसिया में जोड़े गए हैं। जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। परमेश्वर आपको मसीह में देखता है, इसलिए वह आपको सिद्ध पाता है। हम गलातियों के पत्र 3 अध्याय उसके 28 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। ध्यान दीजिए, मसीह कोई जातिवाद नहीं है। मसीह में कोई भी हो वह मेरा भाई है। उसका रंग रूप मुझे प्रभावित नहीं करता। उसका मन मेरी रुचि का कारण है। अनेकों के मन काले हैं मेरे मित्रों, और वे मेरे भाई नहीं हैं। केवल मसीह यीशु में हम एक हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझे सब लोग पत्र में भाई कहते हैं और मैं उन्हें भाई कहता हूं, क्योंकि हम सब भाई हैं। हम मसीह में एक हैं और अनंत काल तक बने रहेंगे। न कोई दास न कोई स्वतंत्र, आज पैसे वाले और मजदूर परस्पर विरोधी हैं। केवल मसीह उन्हें जोड़ सकता है और कोई नहीं। जी हाँ, आगे लिखा है, न कोई नर न नारी, मसीह वह काम करता है जो महिला मुक्ति मोर्चा नहीं कर सकता। वह हम सबको स्वयं में एक कर सकता है। यह कैसे अद्भुत और भली बात है। हम आखिरी पद पढ़ते हैं, गलातियों की पत्री 3:29 लिखा है, और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हम अब्राहम के वंशज कैसे हैं? अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया था और हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, अतः हम उसके वंशज हैं। अब्राहम बलि लेकर आया था जो मसीह का प्रतीक थी। आज मसीह आ चुका है और मैं 2012 वर्ष बाद कह सकता हूं कि मसीह परमेश्वर का पुत्र आया और मेरे लिए क्रूस पर मर गया कि मैं जीवन पाऊं। मैं उसमें विश्वास करता हूं। डॉक्टर मगी कहते हैं कि मुझे एक बार भले यहूदियों में प्रचार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने आरंभ करते हुए कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं अब्राहम के वंशजों से बात करूं। उन सब के चेहरे खिल उठे। आगे मैंने कहा, क्योंकि मैं भी अब्राहम का वंशज हूं। इस पर वे मुस्कुराए नहीं। कुछ के चेहरों पर मैं प्रश्न चिन्ह देख सकता था जो सही था। यदि मैं मसीह में हूं और आप मसीह में हैं, तो हम अब्राहम के वंशज हैं और प्रतिज्ञा के अनुसार हम उत्तराधिकारी हैं। यह कैसी अद्भुत और महान बात है। मेरे मित्रों, यह सच है कि आप कोई भी क्यों ना हो, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने जीवन में उसे ग्रहण कर लेते हैं, तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12 के अनुसार आप उसकी संतान बन जाते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें कि संतान वही है जो उसका है, और आप उस पर विश्वास करते हैं तो आप उसके हो जाते हैं। आइए आज हम अपने जीवन में इस बात को जांचें और देखें कि हम किसके संतान हैं। क्या हम शैतान की ओर से हैं या परमेश्वर की ओर से हैं? हम किसकी ओर से हैं? हम प्रभु के पास आएं, अपने जीवन को जांचें और आज की इस घड़ी में अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दें। आइए आप मेरे साथ प्रार्थना करिए। हमारे अत्यंत दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी आज की सामर्थ्य और जीवित वचन के लिए, जिसके द्वारा से प्रभु आपने हमें इस बात का स्मरण दिलाया है कि आपके द्वारा ही हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, व्यवस्था के द्वारा नहीं। व्यवस्था हमें इस बात को साबित करती है कि हम पापी हैं, हमें इस बात का बोध कराती है कि हम पापी हैं, परंतु सिर्फ और सिर्फ आपके बेटे प्रभु यीशु के द्वारा ही हमें उद्धार की प्राप्ति है। इस समय हमारे जितने भी भाई बहन आपके वचन को सुने हैं पिता परमेश्वर, आपने उनके जीवन से बातचीत किया है, और इस समय जब वे अपने जीवन में एक सही निर्णय लेना चाह रहे हैं, हमारी विनती है आप उनकी सहायता करें ताकि वे इस बात को समझ सकें कि वे आपके बेटे और बेटियां बन जाएं। हाँ प्रभु, आप इस संसार में इसलिए आए ताकि हर एक मानव जाति इस बात को जान ले कि आप उद्धार करता है। आकाश के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें, सिर्फ और सिर्फ यीशु के नाम के द्वारा हमें उद्धार की प्राप्ति है। विनती करते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12 के अनुसार कि जिन लोगों ने आपको ग्रहण किया है पिताजी, आप उन्हें अपना पुत्र और पुत्री बना लीजिए, उनके जीवन को आशीषमय कर दीजिए। आज के दिन आप उनके हरेक के पापों को क्षमा कर दीजिए, अपनी शांति अपने आनंद उनके जीवन में उंडेल दीजिए, ताकि प्रभु जी आगे से वे अपने पीछे जीवन को न देखें बल्कि आगे देखते हुए आप में बढ़ने पाए। हमारी प्रार्थना है जो परिवार निराश है, जो परिवार चिंतित है, तनाव में है, पारिवारिक समस्याओं में है, उलझे हुए हैं, आप उनकी भी सहायता करें ताकि प्रभु जी उस परिवार में आपकी उपस्थिति पाए जाए। इस बात को फिर से बार हम स्मरण करते हैं कि आपके द्वारा ही परिवार में शांति है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, इसलिए तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। हाँ प्रभु, हम उस शांति को इस परिवार के लिए, उस जीवन के लिए मांग लेते हैं जो इस समय आपसे मांग रहे हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हम सबकी प्रार्थना को सुना है, हमारे भाई बहनों के निर्णय को आपने देख लिया है। प्रभु जी आप उन्हें आदर दें, उनकी सहायता करें ताकि हर एक जीवन आप में बलवंत हो सके। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, जैसा कि हमने आज के अध्ययन में देखा है कि प्रभु चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति उसको ग्रहण करे, और जो कोई उसे ग्रहण करेगा वही उसका पुत्र या पुत्री या संतान होगा, अन्यथा नहीं। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आज आपने अपने जीवन में एक सही निर्णय लिया है। कृपया आप उसका अनुसरण करें, परमेश्वर के डर और भय में अपने जीवन को व्यतीत करें, प्रतिदिन इस कार्यक्रम को सुनें, दूसरों को बताएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें। आज के इस अध्ययन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। Hallelujah!